الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ مدنی چینل کی تو کیا ہی برکتیں ہیں، کیا ہی بہاریں ہیں، گھر بیٹھے علم دین کی بہاریں برکتیں ہمیں پہنچاتا ہے۔ ماہ رمضان تو کیا آتا ہے، دل کھل اٹھتے ہیں، دل جھوم اٹھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ رمضان آیا اور آتے ہی گزرتا گیا گزرتا گیا، ایک ایک دن کر کے رمضان ہم سے جدا ہوتا گیا۔ پہلی سحری، پہلی افطاری، دوسری سحری، دوسری افطاری، پہلا عشرہ گیا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ آیا عشرہ مغفرت، وہ بھی ہم سے رخصت ہوا، پھر عشرہ جہنم سے آزادی تیسرا عشرہ، اور اب تیسرے عشرے کی بھی کچھ ہی ایام باقی ہیں۔ آپ دیکھیے، دیکھتے ہی دیکھتے ہی اللہ کا مہمان مہینہ، یہ وہ مہینہ کہ جو مغفرت کے پروانے لے کر آیا، جو خوشیوں کے پروانے لے کر آیا، جس مبارک مہینے میں جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازوں پر تالے پڑ گئے، شیاطین قید کر دیے گئے، نیکیوں کا ذوق و شوق، نیکیوں کا جذبہ، مسجدوں کی رونقیں، سحر و افطار کا شوق۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ذرا غور فرمائیے، اب رخصت رمضان ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج گھر اور معاشرہ پروگرام میں ہم نے یہی موضوع لیا ہے، عید اور ہم اور رخصت رمضان، الوداع ماہ رمضان، رمضان کس طرح رخصت ہو رہا ہے، اور ابھی بھی اس کے چند دن باقی ہیں، کچھ دن باقی ہیں، کیا پتہ عید کا چاند دیکھنا بھی ہمارے نصیب میں ہے کہ نہیں ہے۔ کئی جنازے چاند رات کو بھی اٹھتے ہیں، عید کے دن بھی اٹھتے ہیں، عید کا جوڑا وہ پہننا نصیب میں نہیں ہوتا، کفن پہن لیتا ہے، عید کی نماز نصیب میں نہیں ہوتی ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھ دی جاتی ہے، کتنے سے واقعات ہیں۔ تو یہ رمضان آیا تھا تقوی کا پیغام لے کر، پرہیزگاری کا پیغام لے کر، نیکیوں کا پیغام لے کر آیا تھا، ہماری عادت بنانے، ہمیں پریکٹس کروانے کہ جب بندہ اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر یا اللہ کی محبت کی وجہ سے جب سحری کر لیتا ہے، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اس کا روزہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، تو وہ کھانا پینا اور جو چیز روزے میں منع ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور غروب آفتاب تک، جب تک غروب آفتاب کا کنفرم نہ ہو جائے، روزے دار کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، اتنا رکتا ہے، پھر جب افطار کا وقت ہوتا ہے روزے دار کھاتا پیتا ہے، اس سے پہلے نہیں کھاتا، کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے۔ وہ جائز کھانا چھوڑ دیتا ہے کہ میں روزے دار ہوں، وہ جائز اشیاء چھوڑ دیتا ہے، لیکن ہم رمضان میں اور یا رمضان کے علاوہ وہ کام نہیں چھوڑیں گے جو ناجائز ہیں، وہ جو کام نہیں چھوڑیں گے جو گناہ ہے، اللہ پاک اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی ناراضگی کا سبب بننے والے کام، گناہ والے کام، ناجائز کام۔ تو یہ رمضان آیا، پیغام لے کر آیا، ابھی ہم سے رخصت ہونے پر ہے، تو اس کے جو بقایا دن رہ گئے اس کو بھی اس طرح گزاریے کہ میری پوری زندگی نیکیوں میں گزرے، مجھ سے نماز نہ چھوٹے، مجھ سے کوئی نیکیاں نہ چھوٹے، تلاوت قرآن نہ چھوٹے۔ بلکہ یوں بھی ہوتا ہے کہ جب رمضان کے آخری ایام آتے ہیں تو نیکیوں کا جذبہ ٹھنڈا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، بازاروں کی طرف رخ زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ عید جو رمضان کے صدقے میں ملی، اسی رمضان میں رمضان کے روزے چھوڑ کر، عبادت چھوڑ کر عید کی تیاریاں کرنے گئے، اللہ والوں کی عید کے معمولات کیسے رہیں؟ تو ہمارے مبلغین ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ، آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے وسیم مدنی بھائی موجود ہیں ماشاءاللہ، ہمارے محشید مدنی بھائی موجود ہیں، آپ دونوں کو مرحبا کہتے ہیں، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے، اچھی اچھی نیتیں اللہ پاک ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں وہ بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ اول تا آخر ہمارے اس پروگرام گھر اور معاشرے میں ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ درود پاک کے فضائل سے متعلق پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مبلغین ہمارے ساتھ موجود ہیں، وسیم مدنی بھائی، رمضان آیا، خوشی ہوئی، اب رخصت ہے، یہ جو غم کا غلبہ ہوتا ہے، یہ جو کیفیت بنتی ہے، اور یہ ہے اصل میں کیا چیز؟ کئی لوگ غم زدہ ہوتے ہیں، یہ غم کیا ہے، کیا یہ؟
اللہ اللہ، یہ تو حضور بات یہی ہے کہ اگر دیکھا جائے نا تو یہ عاشق رمضان سے پوچھا جائے کہ رمضان ہوتا ہے
اللہ اللہ،
اور اس کے دل کی کیفیت اس مبارک مہینے کی جانے کے وقت کیسی ہوتی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ تب کسی انسان کو بہت ساری چیزیں ملی ہوئی ہوں نا، اور اسے بڑی، جسے کہتے ہیں نعمتیں ملی ہوئی ہوں، वो नेमतें जब उसके पास से जा रही होती हैं या उसके पास से चले जाती हैं, तो ये फितरी तकाजा है इंसानी तबीयत का कि उसे उन नेमतों के जाने पर गम ज़रूर होता है।
सही।
अब एक मुसलमान, उसे पता था मैं एक फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, मेरा रब्बे करीम मुझे 70 फ़र्ज़ के बराबर सवाब अता फरमा,
क्या बात,
नेकियों का अजर व सवाब बढ़ा दिया गया है, अल्लाह के मासूम फरिश्ते मेरे लिए दुआए मगफिरत कर रहे हैं,
अल्लाह,
इतना कुछ हो रहा है और अब ये सारा कुछ चला जाएगा, और ये भी मुमकिन है कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी रमजान हो,
अल्लाह
बाद रमजान मुझे मुयस्सर ही ना आए। हमने इस साल अपने रमजान के इन अय्याम में कई लोगों को सोचा होगा, पिछले साल वो भी था, इस साल नहीं है, पिछले साल वो भी था, इस साल नहीं है, कहाँ चले गए, दुनिया से चले गए, उनका वक्त पूरा हो गया था और शायद उनके तसव्वुर में भी नहीं था कि आने वाला रमजान मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन चला गया। अब इसी तरह हमारे साथ भी है कि आने वाला रमजान हमें मिले ना मिले, हमारी जिंदगी का कुछ भी नहीं पता। अब जो ये गम है, मुफ्ती अहमद आल खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला ने बड़ी खूबसूरत इस बारे में एक शरह बयान फरमाई हदीस पाक की, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो फरमान है ना, तुम्हारे पास मुबारक महीना रमज़ान आया है, इस हदीस पाक के हिस्से के तहत मुफ्ती अहमद आल खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि इस हदीस से मालूम हुआ कि माह रमज़ानुल मुबारक की आमद यानी आने पर खुश होना और एक दूसरे को मुबारकबाद देना सुन्नत है, और जिसकी आमद यानी आने पर खुशी होनी चाहिए उसके जाने पर गम तो होता ही है।
अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
आप फरमाते हैं कि देखो, निकाह खत्म होने पर औरत को शरअन गम लाजिम है, जो इद्दत का हुक्म बयान किया गया कि इन अय्याम में इद्दत गुजारे, क्यों, क्योंकि एक उसको निकाह की बहुत जबरदस्त नेमत मिली थी, घर बन गया था, लेकिन चले गए, अब जुदाई हो गई, तो फरमाया कि अब इस गम में अपना वक्त गुजारे, अपना वक्त पूरा करे। फरमाया इसी तरह अक्सर मुसलमान जुम्मतुल वदा को मखमूम और चश्मे पुरनम यानी गमगीन होते और रो रहे होते हैं, और खुतबा यानी खतीब साहिबान इस दिन में कुछ वदाइया कलीमात यानी रालवदा माह रमज़ान के कलीमात भी पढ़ते हैं, क्यों, ताकि मुसलमान बाकी बची हुई घड़ियों को गनीमत जानकर नेकियों में गुजारें और ज्यादा कोशिश करें।
क्या बात।
देखिए, अब ये गम एक तो बंदे को गमगीन भी कर रहा है, साथ साथ ये गम उसे उभार भी रहा है कि बस अब ख़त्म है, अब बस रमज़ान जा रहा है, मैं जल्दी जल्दी नेकियां कर लूँ, जल्दी जल्दी नेकियां कर लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कर लूँ, यानी ये जिसको गम होगा ना, तो वो अपने वक्त को, फिर वो कहते हैं ना कि तब कोई बंदे को मिल रहा हो कुछ और कोई ऑफ़र लगी हुई हो, तो उसका यही होता है कि भाई ऑफ़र ख़त्म होने वाली है, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, ऑफ़र ख़त्म होने वाली है। जिन मार्केट्स में ऑफ़र लगती है तो उन मार्केट्स में आखिर वक्त में बड़ा रश बढ़ जाता है कि बस ख़त्म होने वाली है, आखिरी तारीखें। अब यहाँ पर रब्बे करीम की तरफ से बहुत कुछ ऑफरें थी मुसलमानों के लिए, बड़ी बरकतें, बड़ी रहमतें, बड़ी वसतें थी, अब यही है कि बस अब जा रहा है, अब जल्दी जल्दी समेट लो, जितना समेट सकते हो ले लो।
सही।
तो अब उसमें उतना ही तब उसे गम होता है ना, तो वो उस कैफियत में ज्यादा से ज्यादा नेकियों की तरफ कोशिश करता है।
सही।
तो ये बड़ा काबिले तारीफ गम है, और ये वो गम है कि जिसको एक मुसलमान का दिल बड़ा महसूस करता है, और ये ईमान का तकाजा है एक मुसलमान का कि इतनी बड़ी नेमत आई थी, रब का रहमतों वाला बरकतों वाला महीना आया था, जो कि अब मेरी तरफ से रुखसत की तरह।
बिल्कुल ठीक फरमा रहे, बिल्कुल ठीक। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, वाकई जिससे जितनी मोहब्बत, जो जितनी इनामात, नवाजिशात, मेहरबानियाँ, शफकतें करता है, उसके जाने का उतना ही सदमा होता है। फिर जिसको जिसकी जितनी कदर, उसके जाने का उतना ही सदमा। महशीद मदनी भाई, अभी तो रमज़ान की जैसे हम बातें सुन रहे हैं, रमज़ान रुखसत होने पर है और एक कैफियत भी बनती है, अल्लाह जिसको अता फरमा दे, लेकिन एक इबादत बिलखसूस तो आया तकवा और परहेजगारी का पैगाम लेकर। कई ऐसे लोग हैं कि यहाँ ईद का चांद नज़र आया, मस्जिदों की वो रौनकें चली गई, इबादत का ज़ोक व शौक चला गया, तिलावत का ज़ोक व शौक चला गया, बाज़ारों में रौनकें आ गई है। तो कोई ऐसा फार्मूला या कोई ऐसी तजवीज़ या कोई ऐसा मशवरा या कोई ऐसी चीज़ आप दीजिए, टिप्स बताइए कि मर्दों में भी, औरतों में भी, ख़वातीन में भी, जवानों में भी, बूढ़ों में भी, ये इबादत का ज़ोक कायम रहे, मस्जिदों में ये रौनकें रहें, नेकियों का जहन बना रहे, कैसे करें ये?
अली भाई, वाकई ये रमज़ान के कदरदान तो वाकई इस चीज़ को समझ सकते हैं। अभी ये जो रमज़ान के गम के ताल्लुक से बात हो रही थी, तो मैं ये सोच रहा था कि आदमी जिस दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है, बड़ों में होता है, कोई दादा होते हैं, नाना होते हैं, वालिद होते हैं, अगर उनके बारे में ये खबर आ जाए कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया,
अल्लाह,
चंद दिन चंद घंटों का ये मेहमान रह गया, उस पर क्या गुजरती है। तो जब वो इंसान जिससे मोहब्बत करता था, जो एक फितरती तकाजा है वालिद वालदा में से है या दादा दादी नाना नानी में से है, और मोहब्बत की कैफियत ऐसी होती है कि उसको छोड़ने का दिल नहीं करता, जब वो चला जाता है तो वो एक रोने की कैफियत बनती है, घर में एक ऐसी कैफियत बन जाती है, जाने के बाद तक उस गम की कैफियत रहती है। तो वाकई ये रमज़ान की कैफियत भी ऐसी ही है। अच्छा, फिर हम उससे एक और कंपेरेबिलिटी लेते हैं। जब वो चला जाता है तो उसकी यादों को बाकी रखा जाता है।
सही।
जो वो खाया करता था घर में वो पकेगा कि इसको ये पसंद था।
सही।
उसी पर फातिहा खानी हो रही होती, उसको कोई बात पसंद थी, कोई अमल पसंद था तो उसको इख्तियार कर लेंगे कि जी बाबा को ये बहुत अच्छा लगता था इसलिए मैं इसको करूंगा।
सही, बिल्कुल।
तो जिस तरह ये हम अपने प्यारों की इन बातों को, यादों को याद रखते हैं, इसी तरह हमें रमजान की लज्जत को याद रखना चाहिए।
सही।
रमजान की लज्जत है ही इबादत से।
सही।
रमजान की लज्जत सहर व इफ्तार से भी है। यही वजह है कि रमजान के रोजे तो हमने फ़र्ज अदा कर लिए, अब हमें हदीस मुबारक में क्या तरगीब मिलती है कि शवाल अल मुकर्रम के 6 रोज़े रखे जाएं।
क्या बात।
इसमें ये रमज़ान की याद है कि ये 6 रोज़े शश ईद के जो रोज़े रखेंगे तो वही रमज़ान की एक लज्जत महसूस होगी कि सहरी कर रहे हैं, इफ्तार कर रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, रोज़े में पूरा दिन गुजर रहा है। तो इस तरह से ये अपने रमज़ान की लज्जत को बाकी रख सकता है। अच्छा, इसी तरह से कई ऐसे मौतकफ़ीन देखे, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का माहौल तो इस चीज़ से भरा पड़ा है कि ऐसे मौतकफ़ हैं कि जिनकी ज़िंदगियों में रमज़ान से ही तब्दीली आ गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में हमें नवाफिल पढ़ने की सआदत मिलती है, यानी अवाबीन की नमाज़ पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, बहुत सारे एक तादाद होती है रमज़ान में कि वो उठ ही जाते हैं सहरी में, तो वो रमज़ान के अंदर तहज्जुद के आदी बन जाते
हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
कई ऐसे मौतकफ़ होते हैं कि वो जो है खुद से भी पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, कज़ा उम्री अदा कर रहे होते हैं, एक तादाद और जज्बा बढ़ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें कंटिन्यू रहें, अगर ये कंटिन्यू रहेंगी वो रूहानियत इबादत की जो हमें मुयस्सर आ रही है रमज़ान में और रमज़ान के बाद भी मिलती रहेगी। अच्छा, कट कहाँ आता है? कट आता है ईद की तैयारी में।
सही।
प्रॉब्लम यहाँ आती है, जब एतिकाफ से उठे तो जी सुबह ईद है, ये चीज़ रह गई थी, ये चीज़ रह गई थी, इन चक्करों में बाजार की रौनक बन गए। अच्छा, शैतान तो चांद नजर आता है, शैतान तो खुल गया, हम उसके वारों का शिकार हो जाते हैं और यूं हम मस्जिदों से दूर हो जाते हैं, याद इलाही से दूर हो जाते हैं। अच्छा, हमें रमज़ान के अंदर और मौतकिफ की चले, अभी क्योंकि एतिकाफ चल ही रहा है मसाजिद के अंदर, हम उसकी मिसाल लेते हैं, हमें एतिकाफ के अंदर इबादत की सआदत क्यों मिलती है? उन सोहबतों से दूर रहने की वजह से, जिनकी वजह से हम बाहर मस्जिदों में नहीं आते।
बहुत प्यारी।
आज अल्लाह पाक ने हमें ये सआदत दी, अपने घर का हमें मेहमान बना लिया, अपने घर का मेहमान बना के इबादत की तौफीक भी दे दी, अपनी याद की तौफीक दी, अपने बारगाह में रोने की सआदत दी, उसकी बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाकर सिर्फ ये दुआ, या अल्लाह हमें बख्श दे, या अल्लाह बख्श दे। जो बख्शिश का सवाल हो रहा है ये रब की तौफीक से है। तो वो जिस सोहबत से दूर रहकर मुझे ये तमाम तौफीक मिली, अब मेरी जिंदगी की आने वाली जो अय्याम है अल्लाह पाक ने मुझे दिए अगर इसके बाद, तो मुझे ये जिम्मेदारी है मेरी कि मैं उस तरफ ना जाऊं, उसके असबाब की तरफ भी ना जाऊं, उन सोहबतों की तरफ भी ना जाऊं। होता यह है कि चांद नजर आया, वही सोहबतें हमें गले में हार डालकर लेके जा रही होती हैं। बज़ाहिर वो हार तो फूलों के होते हैं, लेकिन उनके पसे पर्दा कुछ ऐसी कैफियत होती है जो हमने मस्जिदों से दूर ले जा। तो नमाजों के ताल्लुक से मस्जिद में आना, कि मस्जिद में आए, पहले जब हम शुरू में एहतिकाफ के माहौल से वाबस्ता हुए थे तो लैलतुल जायज़ा इसके मनाने का एक अहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के माहौल में मिलता है। अमीर अहले सुन्नत जो तरगीब दिलाते हैं कि चांद रात को इस्लाम में अपने घर ही नहीं जाते, पूरी रात अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरा और इसके अहतमाम में, अच्छा कुछ देर आराम करके फिर ईद की नमाज़ पढ़ना, ये लैलतुल जायज़ा। इस रात के ताल्लुक से तो हदीस पाक में है कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला खुसूसी करम फरमाता है कि पूरे रमज़ान में जितनों को बख्शा होता है उनकी तादाद के बराबर फ़कत इस रात में बख्शिश का सामान बट रहा है। तो ऐसी प्यारी सआदत जब इस लैलतुल जायज़ा में मिल रही है, उसका मकसद यही है कि हम अपने आप को किसी तरह इबादत में मसरूफ़ रखें। ये रात जो चांद रात है, ईद उल फितर की रात, ये भी हमारी गफलत की वजह से।
लैलतुल क़द्र तो सुनिए, लैलतुल जायज़ा सब नहीं जानते हो शायद, क्या
लैलतुल जायज़ा? इनाम मिलने की रात,
यानी चांद रात।
चांद रात,
चांद रात।
तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से इरशाद हुआ, क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि जब मजदूर अपनी मजदूरी पूरी कर लेता है तो उसे अपनी मजदूरी पूरी दी जाती है, तो ये मजदूरी मिलने की रातें पूरे महीने जो इबादत की उसका अल्हम्दुलिल्लाह इनाम मिलता है इस रात में, इस रात में भी मिलता है। और फिर ईद का दिन जब उसके बाद आता है तो रब की बारगाह से ऐलान होता है कि अपने घरों में मग़फ़िरत याफ्ता यानी बख्शे हुए लौट जाओ, ठीक है ना। तो और मुनादी निदा कर रहा है गलियों के ऊपर, एक जबरदस्त समा है रूहानियत का। इंसान अगर इस लज्जत को महसूस करे ना, यकीन करें ईद का दिन भी इबादत में गुजरे, ठीक है ना, चांद रात भी इबादत में गुजरे और ये लज्जत रमजान की बाकी रहे। कि अमीर अहले सुन्नत रमजान के आखिरी दिनों में गम की कैफियत में होते हैं, हम देखते हैं अमीर अहले सुन्नत की दुआओं में क्या मिलता है, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, पूरे साल ये दुआ मिलती है। रजब का महीना आता है तो वो रजब ने जो दुआ पढ़ना सुन्नत है, हर थोड़ी देर के बाद आपको मदनी मुजाकरे में ये दुआ मिलेगी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबियूं व शाबाना व बल्लिगना रमजान। ये जो दुआ है ये इस बात की कैफियत है कि जिस तरह जन्नत पूरे साल सजाई जा रही है, हमारा दिल भी रमजान की याद से सजा रहे, पूरे साल हम रमजान को याद रखें। अली भाई, अमीर अहले सुन्नत का ये जो अंदाज है ये बुजुर्गों की याद है। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला ने तहरीफ फरमाते हैं कि पहले के लोगों का ये मामूल था कि माह रमजान से 6 महीने पहले इसको पाने की दुआ की जाती और माह रमजान के गुजरने के बाद 6 महीने तक इसकी कबूलियत की दुआ की।
अल्लाह अल्लाह,
ये माह रमजान है ही ऐसी शय, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि अगर मेरी उम्मत को मालूम हो जाए कि रमजान क्या है तो तमन्ना करेगी कि पूरा साल रमजान। ये इसकी अहमियत को, इसकी कैफियत को वाजे करता है। आज हम देखते हैं कि कोई भी चीज हमारे माशरे में, हमारी लाइफ के अंदर कोई इंपॉर्टेंट है और वो चीज हमसे मिस हो रही है तो हम गम करते हैं, कहीं इजहार आंसुओं की शक्ल में होता है और कहीं दिल की गमगीन ऐसी कैफियत होती है कि कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता। तो क्यों ना माह रमजान का गम किया जाए और माह रमजान की याद को बाकी रखा जाए, इबादत की शक्ल में, रियाजत की शक्ल में, रोजों की शक्ल में, तिलावत कुरान की शक्ल में। रमजान से पहले पूरे साल कुरान पाक खुलता मुश्किल है, लेकिन जैसे ही रमजान आता है तो कुरान पाक कई घरों में खुल जाता है, उसकी तिलावत शुरू हो जाती है। इवन के हुफाज इसकी तैयारी में कई मरतबा कुरान पाक पहले से खोलने का एहतमाम करते हैं, पूरे रमजान उसका बार बार दौर कर रहे होते हैं। तो ये तिलावत कुरान का महीना ये हमसे रुखसत हो रहा है, रोजे रखने का महीना ये हमसे रुखसत हो रहा है, जो हमें जहन्नम से आजादी का मुजदा देने के लिए आया था ये महीना हमसे रुखसत हो रहा है। तो इसकी कदर भी की जाए, इसकी याद को इस अंदाज में बाकी रखा जाए। फिर इसमें हम ये चीज भी प्लस करते हैं कि जिस तरह हमें इस महीने में गरीबों पर, अपने गरीब रिश्तेदारों पर खर्च करने का मौका मिल रहा था, पूरे साल उन गरीब रिश्तेदारों का भी ख्याल रखा जाए। तो ये भी एक हमारा सिलसिला हो जाएगा कि पूरे रमजान वो घर जिनको रमजान में खुश किया, रमजान के बाद उनकी खुशियां बाकी रखेंगे तो इसमें भी रमजान की याद ताज़ा।
क्या बात है, क्या बात है। वाकई मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, जो आशिक रमजान हैं वो पूरा साल रमजान की यादों को ताजा रखते हैं, इबादत, तिलावत और बहुत सारी नेकियां करके। वाकई रमजान तो रमजान है, अल्लाह पाक हमें इससे हकीकी मोहब्बत भी अता फरमाए और जिस जिसने जिस तरह भी रोज़ा, नमाज, सदका, खैरात, तरावी, तिलावत, जो भी इबादत की, अल्लाह पाक सबकी इबादत को कबूल भी फरमाए और सारी ज़िंदगी अल्लाह पाक हमें बस इबादत की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो अर्ज़ की कि सारी ज़िंदगी, हमें पता ही नहीं हमारी ज़िंदगी कितनी है, तो अपना शब व रोज़, दिन रात जो भी है वो अल्लाह पाक की इबादत में लगाइए। वसीम मदनी भाई, जैसे रमज़ान तो रुखसत पर है, ये जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई अपने अपने तौर पर जो भी काम काज मर्द हजरात बाहर करते हैं, ख्वातीन घरों में करती हैं, स्पेशली इस मौके पर मैं ही अर्ज़ करूँगा, आप भी कुछ फरमाएं इस पर, मैशिद मदनी भाई भी कुछ अगर देना चाहें राय, कि घर की ख्वातीन का मर्द हजरात शुक्रिया कैसे अदा करें। अब ईद करीब है, रमज़ान भी रुखसत पर है, अब कोई काम वाला या काम वाली, कोई अगर हमारा कोई हाथ बटाए बंदा, कुछ ना कुछ उसको उजरत या मजदूरी, तो घर वालों को ना उजरत दी जाएगी ना मजदूरी, लेकिन घर की खवातीन का एक बहुत बड़ा पार्ट तो है वाकई, कि सुबह सहरी में उठना, सहरी बनाना, बाज़ औक़ात पता नहीं इनको भी टाइम मिलता है नहीं मिलता खाने का, सबसे आखिर में खाएंगी, इसी तरह इफ्तार में कोशिश करेंगी गर्म गर्म सर्व किया जाए, ये सब मनाजिर घरों में होते ही हैं। वो घर की जो खवातीन हैं स्पेशली जो अरेंज करती हैं, सबके लिए दस्तरखान लगाना, दस्तरखान उठाना, आखिर में बैठना, बाज़ औक़ात बचा हुआ खाना, फिर जिसने नहीं खाया उसकी फ़िक्र करना, तरावी के बाद मर्द हजरात आएंगे उनकी फ़िक्र करना, फिर सहरी में क्या बनेगा इसकी फ़िक्र करना, ये सारा महीना सब देखते हैं। तो मर्द हजरात या जो भी घर के अफराद हैं, घर की खवातीन का, बच्चे अपनी वालिदा का, बच्चों के अब्बू अपनी बच्चों की माँ का, यानी किस तरह घर में एक माहौल बनाएंगे, एक दूसरे का शुक्रिया अदा करें,
वाह। वैसे तो उज़ूर हकीकत यही है कि कहा गया ना कि जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता तो वो अल्लाह तबारक व ताला का भी शुक्रगुजार नहीं बनता।
वाह वाह, बड़ी प्यारी बात।
तो हमें लोगों का, अब लोग कौन, लोग वही तो हैं जो हमारे से रिलेटेड हैं, हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, हमारे अहले खाना हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं। तो और दिलों को जो जीतने वाली बात होती है ना हुजूर,
सही,
ये किताबों में लिखा है कि जो आदत होती हैं दिलों को जीतने वाली, उनमें से एक आदत ये भी है कि कभी किसी ने कोई आपके साथ अच्छा सलूक किया ना, उसको अप्रिशिएट किया जाए।
सही।
उसको, उसकी तारीफ की जाए, उसकी जो खूबी है ना उसको बयान किया जाए।
सही।
और बाज़ लोगों को तो हमने देखा है कि वो तब कोई इस तरह का मामला होता है तो वो इस तरीके से खूबी बयान करते हैं कि बाज़ औक़ात वो खूबी जो जिसने किया होता है ना, वो खुद यकीन नहीं आ रहा होता कि मेरे अंदर ऐसी खूबी है।
सही।
तो यानी कि इतना बढ़कर, इतना आगे बढ़कर कि समझ रहे हैं कि वो इसे कहते हैं कि 10 किलो खून बढ़ा दिया उसका।
क्या बात।
तो देखिये, घर की खवातीन यकीनन ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि इन अय्याम में इन्होंने कितनी मेहनत की, कितनी कोशिश की, हालांकि तबीयत के तकाजे भी बाज़ुकात नहीं होते,
सही,
साथ नहीं दे रही होती तबीयत, मुख्तलिफ हालात होते हैं, कभी बीमार हो गई तो कभी सर में दर्द, लेकिन सर में दर्द है, अब इफ्तार के वक्त तो इफ्तारी बनानी है, बुखार है लेकिन इफ्तार के वक्त कुछ ना कुछ अपने आप को मैनेज करके बनाना है। इन अय्याम से भी गुजरी होंगी, बड़ी परेशानी के अवकात से भी गुजरी होंगी, लेकिन अब ऐसे मौके पर अगर शुक्रिया भी अदा ना किया जाए तो ये बड़ी बुरी बात है। तो शुक्रिया अदा किया जाए, बल्कि बाज़ अक़वाम का तो ये जिक्र किया गया है और ये एक अच्छा अमल है, अच्छा अमल किसी का भी हो ये पसंद किया जाए। और ये गालिबन अरब का अंदाज बयान किया जाता है कि ये हक्कुल मिल्ह अदा करते हैं।
ये क्या है?
हक्कुल मिल्ह मानी नमक का हक।
अच्छा।
और इनके यहाँ ये अंदाज है कि जब ये रमजान गुजर जाता है तो ईद वाले दिन खवातीन एक मखसूस अंदाज पर कुछ मिठाई और कावा लाके मर्दों को पेश करती हैं।
अच्छा
अच्छा। अब जो ये जो मर्द हजरात हैं ये कावा पीते हैं और कावा पीने के बाद जो कावे जिस उसमें आया है, कप में आया है, उस कप में कोई ना कोई गिफ्ट और उमूमन कोई छोटी सी मिसाल के तौर पे अंगूठी है या इस तरह की चीज जो है वो उसके अंदर डाल देते हैं।
अच्छा।
और फिर वो कप तब जाता है खातून के पास तो उसमें कोई ना कोई गिफ्ट और तोहफा उनके लिए पहले से मौजूद होता है।
क्या बात है।
जिससे वो बहुत खुश भी होती हैं और यकीनन ये एक बड़ा अच्छा अमल भी है, काबिले तारीफ अमल भी है। अब अगर हम इतना कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं भी कर सकते, कोई छोटा सा गिफ्ट ही पेश कर दें जितनी आपकी इस्तेआत है और वो गिफ्ट पेश करते हुए, अच्छा गिफ्ट पेश करते हुए इस बात को बिल्कुल कहें आप कि माशाल्लाह आपने बड़ी खिदमत की रमज़ान मुबारक में, आपने बड़ी हमारे रोज़े इफ्तारी वगैरह का एहतमाम भी किया, तो मेरा दिल था कि मैं इस बात का इजहार करूँ। अब ये सास अगर अपनी बहू को दे रही हो तो अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर इस अंदाज पे दें तो वो बहू के दिल में सास की कितनी जगह बनेगी।
क्या बात।
और वो जो बात सासे शिकवा करती रहती हैं कि ये नहीं होता तो वो नहीं होता, आप ये करके देखें फिर देखें क्या कुछ नहीं होता।
क्या बात।
सही है। तो इसी तरह वो नंद भी करें, इसी तरह वो शोहर भी करें, और इस तरीके से अगर पेश करेंगे अपने बच्चों की अम्मी को, अपनी जोजा को, तो देखें फिर क्या होता है। तो शुक्रिया अदा करने से दिल में बड़ी जगह बनती है। तो इसलिए बड़ी कोशिशें की हैं हमारी इन बहनों ने और बड़ी मेहनत की, अपनी नमाज का भी एहतमाम रखा, तरावी भी पढ़ी, कुरान भी पढ़ा, इबादत भी की, साथ साथ खिदमात भी की, तो सब कुछ साथ साथ चलता रहा। तो इस मौके पे कुछ ना कुछ तहाइफ भी होने चाहिए, शुक्रिया के बड़े मीठे मीठे से अल्फाज भी होने चाहिए। तो अल्लाह पाक बरकत दे, इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे नताइज भी होंगे और सवाब तो कहीं नहीं गया, सवाब तो मिलना ही।
क्या बात है। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, वाकई के शुक्रिया अदा करना डेली कर सकते हैं, रोज़ाना ख़वातीन ही खाना वगैरह बना कर देती हैं, ये सहरी इफ्तारी दिगर चीज़ें, ये तो इनको भी पूछ लें आपने खाया नहीं खाया, आपकी तबीयत कैसी है। वाकई ये मर्द हजरात अच्छी तरह जो है वो ये इस पर गौर करें कि अगर घर की खातून खाना कोई भी है, वालदा हैं, बच्चों की अम्मी हैं, कोई जो घर के काम करती हैं, एक दिन खुदा ना खास्ता तबीयत इनकी ऐसी हो जाए सहरी इफ्तारी में ये उठ ना सकें, अल्लाह आफियत का मामला फरमाए, ऐसी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो घर में सहरी बनाएगा कौन? हमारे यहाँ तो वैसे ही गैस का मसला, बिजली का मसला, गैस की लोड शेडिंग, बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, ये फिर भी किस तरह मैनेज करती हैं कि इतने बजे तक ये होगा तो ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। कहते हैं ना कि अगर हमें खाली चाय पकाना पड़ जाए, एक अंडा पकाना पड़ जाए तो हम पूरा किचन उथल पुथल कर देंगे, और बाज़ औक़ात गर्मी भी शदीद होती है फिर भी करती हैं, तबीयत कैसी हो फिर भी करती हैं। असल तो है दिलजोई, दिल में खुशी दाखिल करना, ये अल्फाजों से भी हो सकती है, तोहफे से भी हो सकती है, और जिस तरह दिल खुश किया जाता है तो इसी तरह दिल तोड़ा भी जाता है कि आप लोगों ने किया ही क्या, सारी औरतें करती हैं, सब करती हैं, क्या ऐसा तीर मार लिया, तो बात दिल खुश नहीं कर सकते, तो दिल तोड़िए भी नहीं। तो अल्लाह पाक खुश रखे हमारी इन इस्लामी बहनों को भी कि वाकई ये अपने घरों को संभालती हैं, करती हैं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ ये वाकई घरों को संभालती हैं। अल्लाह पाक सब बच्चियों के, बहनों के नसीब अच्छे करे। अल्लाह पाक इनको भी हिम्मत ताकत दे, छोटे बच्चे भी संभालती हैं और घर में बूढ़े अफराद हों, मर्द हजरात हों या जो मकसद घर के महारिम हैं, उनको बीमार हैं तो उनको ये घर की खवातीन ही का हिस्सा है। तो मदनी चैनल के ज़रिए भी अपने अपने घर के जो मर्द हैं उनको ये तरगीब दिलाई जा रही है कि अपनी घर की ख़वातीन को शुक्रिया भी अदा करें और हो सके तो इनकी दिलजोई के लिए कोई ना कोई ऐसा तोहफ़ा भी ला कर दें कि जिससे इनका दिल खुश हो, और अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करें कि अल्लाह पाक इनको दुनिया और आखिरत की बरकतें अता फरमाए। रमज़ान रुखसत पर है, ईद के दिन करीब हैं। लैलतुल जायज़ा से मुतालिक तो मैशिद मदनी भाई ने बताया, मैशिद मदनी भाई ईद भी आ रही है, रमज़ान रुखसत होता है, ईद आ रही है, तो ईद के मायने क्या हैं और ईद कैसे गुजारी जाए, या बुजुर्गान दीन के कुछ ऐसे वाक़ियात तो कुछ मुख्तसरन, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त एंड पर है तो हमने कहा चले लगे आ तो ईद से मुतालिक भी कुछ बातें हो जाएँ।
ईद की खुशियों का इजहार ये तो मुस्तहब है कि ईद के दिन खुशी का इजहार किया जाए, लेकिन ईद के दिन खुशी में हमें ये ज़रूर ख्याल रखना है कि जैसे थोड़ी देर पहले मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो तमाम उमूर जिनका ताल्लुक बज़ाहिर खुशी से होता है लेकिन ये रब की नाफरमानी का सामान करते हैं, उनमें हमें नहीं पड़ना। तो ईद के माना तो खुशी के ही हैं कि ईद का दिन जो है वो खुशी का इजहार होता है, तो ईद के माना खुशी का इजहार ही है। और बुज़ुर्गों का जो तरीक़ा रहा, जैसे एक हमें वाकया ये मिलता है कि वो कमरा बंद करके रो रहे और लोग परेशान हैं, क्या मामला, आज तो ईद का दिन है आप रो रहे हैं, तो हाँ ये ईद का दिन है, लेकिन उसके लिए ईद का दिन है जिसके रमज़ान की इबादत कबूल हुई, रोज़े कबूल हुए, और मुझे इस बारे में पता नहीं कि मेरे रोज़े कबूल हुए, मेरी इबादत कबूल हुई या नहीं हुई। तो बुज़ुर्गों की ऐसी कैफियात मिलती हैं, लेकिन बिलउमूम हमें ईद के दिन खुशी का इजहार करें।
सही,
तो ईद के दिन खुशी का इजहार भी करें और लोगों के लिए खुशी का सामान भी करें। ये जो शुक्रिया अदा करने के भी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू हुई,
जी जी।
ये भी दिलजोई का सामान है। होता ही कि हमारे घर में जो इस्लामी बहनें हैं इनकी दुनिया वो चार दीवारी की हद तक होती है ज्यादातर, तो वो खुशियां भी छोटी छोटी होती हैं।
सही,
अगर उनकी इन खुशी छोटी छोटी खुशियों का भी हम ख्याल रख लेंगे ना, तो हमारे नज़र में वो बहुत छोटी सी चीज़ होगी, इनके लिए बहुत बड़ी खुशी होगी।
बहुत प्यारी बात।
तो अब इन खुशियों का हम ख्याल सिर्फ ईद वाले दिन ना रखें, ईद के दिन के बाद भी हम उसको रखते रहें, तो इंशाअल्लाह करीम ये खुशियाँ ईद की खुशियाँ दोबाला कर देंगे। और इसके साथ साथ ईद के दिन अपने मरहूमीन को याद रखें, जैसे ईद के दिन हमें एक वजीफा मिलता है कि 300 मरतबा सुबहानअल्लाह व बिहम्दिही का पढ़ करके ईसाले सवाब कर दें, तो ईद वाले दिन इसका भी अहतमाम हो, खास करके जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए, प्यारे रुखसत हो गए। बाद ऐसे होते हैं कि जिनके गुजरने के बाद पहली ईद होती है तो वो अहतमाम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी के लिए हो, बल्कि हर ईद में उसका अहतमाम हो। ज़हे नसीब के कई अच्छा माहौल देखा कि ईद की नमाज पढ़ने के बाद ही कब्रिस्तान जाना है, वो मरहूमीन के लिए सारे सवाब के लिए वो कब्रिस्तान भी जा रहे होते हैं, ये बड़े अच्छे काम हैं। तो बुजुर्गों के तरीके पर अमल करते हुए भी हमने ईद को मनाना है और खुशी का इजहार करना है।
बिल्कुल ठीक फरमाया मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, ईद वाकई खुशी का दिन है, मजदूरी मिलने का दिन है, लेकिन अल्लाह की याद से गाफिल ना हो, ईद के दिन भी हमारी नमाज ना छूटे, कोई गुनाह का काम ना हो, जहाँ मखलूत तफरी गाहें होती हैं ऐसा, जहाँ लेडीज जेंट्स मिक्स हो जाते हैं इस तरह, बेपर्दगी हो, बेहयाई हो, म्यूज़िक हो, गुनाह के काम हो, ऐसा नहीं। अभी तो रमज़ान रुखसत हुआ है और फिर रमज़ान के जाते ही चांद रात या ईद के दिन गुनाहों में पड़ जाएं, नहीं नहीं नहीं, हमने रमज़ान तो हमें नेकियों का पैगाम देने आया था, इबादत की प्रैक्टिस कराने आया था और हम गुनाह में पड़ जाएँ, तो ईद के दिन भी नेकियाँ करनी है, नमाज़ें मर्द हजरात मस्जिद में आकर जमात से पढ़ें, ख़वातीन भी घर में नमाज़ पढ़ें, ठीक है, जो जायज़ तरीका है खुशी मनाने का, मुबारकबाद देने का, ईद मुबारक कहने का, और जो तरीके हमारे मुबल्लिग ने बताए, कब्रिस्तान जाएं, इसारे सवाब करें तो इसकी भी बरकतें मिलेंगी, ईदी देते हैं लोग वो भी दें, बच्चों का दिल खुश होते हैं, जो जिसको दे सकता है वो दें, तहाइफ दें, और मीठा वगैरह जो खाने का है वो भी एतदाल के साथ खाएँ, ऐसा ना हो शुगर लेवल बढ़ जाए, ये तो ईद तो मनाएँ। لیکن جو ہے مزید ان چیزوں کا خیال کہ عبادت میں کمی نہ ہو، ورنہ پہلے دن ہی سے عبادت میں کمی ہوگی تو یہ بڑھتے بڑھتے پھر بندہ وہ رمضان کی وہ جو عبادت والی رونقیں ہیں ان سے دور ہو جائے گا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام گھر اور معاشرہ، عید کی آمد ہے، رمضان کی رخصت ہے اور ایک کیفیت ہے، عید کی تیاری اور رمضان کی رخصت، پھر مسجدوں میں جو اعتکاف کی بہاریں ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اعتکاف کے مناظر تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہوں گے، تو ان میں کئی ایسے لوگ ہیں جو پہلی دفعہ آتے ہیں اور آنے کے بعد ان کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ صحبت اور ماحول۔ یہ اچھی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، اچھا ماحول تجھے اچھا بنا دے گا۔ خوشبو والے کی دکان پر جائیے، عطر والے کی دکان پر جائیے، عطر نہیں بھی لیں گے تو اس کا ماحول، انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ دماغ معطر ہو جاتا ہے، کیا خوشبو ہاں۔ کوئلے والے کی دکان پر جائیے، کوئلہ نہ بھی لیں گے، کوئلے کے ذرات اڑ کر کپڑوں کو کالا کر دیں گے۔ یہ گلاب کا پھول ہاتھ میں لیجئے اور چھوڑ دیجئے، پھر ہاتھ سونگیے۔ اب پھول ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن گلاب کا پھول جب ہاتھ میں آیا، اب چلا گیا، لیکن اس کے باوجود گلاب کی خوشبو چھوڑ کے چلا گیا۔ اور کوئلہ ہاتھ میں لیجئے، چھوڑ دیجئے، اب کوئلہ ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ہاتھ وہ کالا کر کے چلا جائے گا۔ اب وہ کالے ہاتھ منہ پہ لگائیں گے تو منہ بھی کالا، کپڑوں پہ لگائیں گے کپڑے بھی کالے۔ تو اسی طرح اپنی صحبت دیکھیے، اپنی گیدرنگ دیکھیے، اپنا اٹھنا بیٹھنا دیکھیے، تو صحبت بہت اثر کرتی ہے، صحبت اثر کرتی ہے، صحبت دل کا رنگ بدل دیتی ہے۔ اگر اچھی صحبت ہوگی تو دل کا رنگ اچھا ہو جائے گا، بری صحبت ہوگی دل کا رنگ برا ہو جائے گا۔ ہم ذرا اپنے اوپر غور کریں کہ ہماری صحبت کیا۔ اچھا، کئی لوگ بولیں گے ہماری صحبت تو بہت اچھی ہے، ہم تو ادھر ادھر نہیں جاتے، ہم تو گھر سے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن میرے مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور فرمائیے کہ آج ایک ایسی صحبت ہے کہ جو فزیکل نہیں ہے، وہ ڈیجیٹل ہے، موبائل فون کے ذریعے، موبائل فون کے ذریعے یہ ڈیجیٹل صحبت ہے۔ اس میں بھی ہم دیکھیں کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کس کو سن رہے ہیں، کیا اس میں گناہ تو نہیں، بے پردگی تو نہیں، بد نگاہی تو نہیں، میوزک تو نہیں، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران عطاری دامت برکات و معالیہ کے ساتھ کوئی ایک نشست تھی، اس میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے اتنی ایک زبردست بات بتائی، نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں ہمارے بڑے، اللہ پاک نے ان کو ماشاءاللہ ایک علم اور عمل کی دولت سے نوازا ہے، امیر علیہ سنت کی خاص صحبت یافتہ، تربیت یافتہ ہیں ماشاءاللہ۔ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، ذرا غور کرو، آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کون ہیں، پہچانتے ہیں اپنے آپ کو نہیں، پہچاننا چاہتے ہیں تو پہچانیے۔ کیسے پہچانیں گے؟ کہ تنہائی میں، اکیلے میں، جو آپ کا جو کرنے کا دل کرے آپ وہ ہیں۔ کیسے؟ اکیلے بیٹھے ہیں، تنہائی میں دل کرتا ہے قرآن پاک کھولیں، تلاوت کریں، تو اے بندہ تیرا دل قرآن میں لگا ہوا ہے۔ تنہائی میں ہیں، اکیلے میں ہیں، تیرا دل کرتا ہے میں مصلی بچھاؤں، نوافل پڑھوں، تو تیرا دل نماز میں لگا ہوا ہے۔ اے بندے، تو اکیلا ہے، تنہا ہے، تیرا دل کرتا ہے میں تسبیح لوں، درود پڑھوں، ذکر و اذکار کروں، کلمہ طیبہ پڑھوں، استغفار کروں، تو تیرا دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ لیکن اے بندے، اگر تو تنہائی میں ہے اور تیرا دل کرتا ہے کہ میں اپنا موبائل اٹھاؤں اور ڈیجیٹل نیٹ ورک پہ جاؤں، سوشل میڈیا پہ جاؤں، کوئی ویڈیو کلپ دیکھوں، کوئی گندا کلپ آ جائے، بے حیا کلپ آ جائے، فحش کلپ آ جائے، میوزک آ جائے، بے پردہ عورت آ جائے، ناچ گانے آ جائیں، اور تو اس میں لذت لینے لگے، گندی لذت لینے لگے، تو اس میں گناہ کرنے لگے اور اس میں کھو جائے، رات تیری نکل جائے، کئی کئی گھنٹے نکل جائے، تو اے بندے، یہ تیرا تعارف ہے، یہ تیرا پرسنل سیلف انٹروڈکشن ہے کہ تو اچھا ہے کہ برا، تو صاف ہے کہ ستھرا ہے کہ گندا، اندر سے گندگی ہے کیا ہے۔ تو اکیلے میں جو کرنے کا دل کرے انسان وہ ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارا اکیلے میں کیا کرنے کا جی چاہتا ہے، ہماری تنہائیاں کیسی، ہماری راتیں کیسی، ہماری خلوت کیسی، تنہائی میں ہم کیا ہیں، عبادت گزار ہیں یا گناہ گار ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگوں میں تو ایک ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ نیک صورت، نیک سیرت، بظاہر نیک گیٹ اپ نظر آتا ہے، تنہائی میں ہم کیا ہیں۔ تو یہ صحبت آج انٹرنیٹ کے ذریعے، موبائل فون کے ذریعے، یہ ڈیجیٹل نیٹورک کے ذریعے، آپ کا لیپ ٹاپ ہے، آپ کا ٹیب ہے، آپ کی کوئی ایسی ڈیوائس ہے جو نیٹ سے کنیکٹ ہے، نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ پھر اس میں جو ہے اعمال کی خرابی، بے حیائی، فحاشی، بد نگاہی، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، اللہ کی پناہ۔ پھر ایسے ایسے بے دین لوگ جو بظاہر دین کے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، جو کیا ان کو عالم کہیں گے، ان کو علم کا عین بھی نہیں ان کے پاس، لیکن اسلامک اسکالر بن کر بس وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پول پھول بکرے، نہ کوئی ان کو دین کا واسطہ، نہ کوئی دین کی باتیں جانتے ہیں، نہ ان کا عقیدے کا پتہ، نہ کوئی ان کے عقائد کا پتہ، نہ کچھ ان کے نظریے کا پتہ، اپنی اپنی ہانکے چلے جا رہے ہیں اور لوگ ان کو سن رہے ہیں، لوگوں کے ایمان عقیدے تک داؤ پہ لگ رہے ہیں۔ تو ہماری صحبت کیسی؟ تو میں عرض کروں گا میرے اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، بچوں کو، کہ موبائل کے ذریعے بھی اپنی صحبت اچھی رکھیے، اپنی آنکھیں اچھی رکھیے، اپنے کان اچھے رکھیے اور اپنی سوچ اچھی رکھیے۔ جو دیکھیں گے وہ کیچ ہوگا، جو کیچ ہوگا وہ دماغ میں جائے گا۔ جب سوچ گندی ہوگی تو وہ گندی سوچ کے اثرات پوری باڈی پر پڑیں گے، دل گندا، پھر حرکتیں گندی، تو ہم گندے بن جائیں گے۔ اچھا بننا ہے تو اپنی تنہائیوں کو اچھا کیجیے، اچھا بننا ہے، نیک بننا ہے تو تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کیجئے، توبہ اور استغفار کیجئے۔ بتقاضا بشریت کے گناہ ہو بھی جائے تو اللہ سے معافی مانگیے، اللہ مجھے معاف کر دے، پھر نیت کیجئے کہ اللہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اینڈ پر ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ رمضان رخصت پر ہے، عید آ رہی ہے، نیکیوں پر استقامت، اور یہ سب ہم سن رہے ہیں۔ اپنے دونوں مبلغین سے عرض کروں گا کہ آج کے ہمارے اس پروگرام اور اس موضوع سے متعلق، اس ٹاپک سے متعلق اپنے ناظرین کو مزید کیا ایسی باتیں بتائیں گے کہ ان کی زندگیوں میں ایک بہتری آ جائے۔ جی وسیم مدنی بھائی، کیا فرمائیں گے آپ؟
جی حضور، میں آخر میں یہی عرض کروں گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ نیکیوں بھری صحبتیں میسر آئی تھیں نا،
سبحان اللہ،
ان کو نہ چھوڑیں۔
کیا بات،
کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا انسان کی طبیعت کو بدل دیتی ہیں۔
بے شک،
میں آخر میں عید کے حوالے سے ہی عرض کروں گا، اور ہمارے وہ بھائی کہ جو بعض اوقات نیا لباس میسر نہ آنے پر دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، دل چھوٹا کر بیٹھتے ہیں، ایسا کچھ نہیں، بلکہ اچھوں کی صحبت اپنائیں گے نا تو دیکھیں برکت کیا ملتی ہے۔ میرے آقا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، آپ کے شہزادے کو آپ نے پرانی قمیض عید والے دن پہنے دیکھا،
صحیح،
تو آپ نے جب پہنے دیکھا تو آپ رو پڑے، اور شہزادے نے عرض کی کہ پیارے بجان آپ کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا بیٹا میں دراصل اس لیے رو رہا ہوں کہ جب تمہارے ساتھ کے دوست تمہیں دیکھیں گے، تمہارے آس پاس کے لوگ، تو وہ تمہیں اس بات کا تانا دیں گے کہ تم عید والے دن بھی پرانے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہو۔ تو شہزادے نے جواباً عرض کی، ابا جان دل تو اس کا ٹوٹے جو رضائے الہی کے کام میں ناکام رہا،
اللہ
اللہ، یا جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو،
کیا بات ہے،
اور مجھے امید ہے کہ آپ کی رضا مندی کے طفیل اللہ عز و جل بھی مجھ سے راضی ہو جائے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہزادے کو گلے لگایا اور اس کے لیے دعا کر۔ تو میں اور آپ اگر کچھ میسر نہیں آ سکا نا، یہ دیکھیں یہ کیا تھا، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت تھی۔
کیا بات،
جو آپ نے کہ شہزادے کو اس انداز پر ملی تھی کہ وہ شہزادے نے آپ کی ڈھارس بناتے ہوئے عرض کی، ابا جان آپ کیوں فکر کرتے ہیں، میں غمگین تھوڑی ہوں، میں تو اس بات پر بس راضی ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے،
کیا بات،
میرا لباس، میرا رہنا سہنا سب ایک طرف چلا گیا۔ یہ بات ہے کہ صحبت اصل دکھاتی ہے، تو اچھوں کی صحبت میں بیٹھ جائیں اور ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کریں، ہر کیفیت میں شکر ادا کریں، بس ایک ہی بات کریں، مولا میں جس حال میں ہوں بظاہر وہ ہے، لیکن مولا بس تو راضی ہو جا، میری زندگی کا حاصل ہی ہے۔
کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آخری میں ہم مشیر مدنی بھائی سے بھی عرض کریں گے کہ آج کے موضوع سے متعلق مشیر بھائی آپ کیا میسج دیں گے؟ یہ
علی بھائی، آج کا موضوع ہے رمضان، عید اور ہم۔ رمضان آیا ہمیں متقی بنانے، ہمیں ستھرا کرنے، ہمارے دل کو پاک کرنے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ یہ دل جو ہے نا، یہ پاکیزگی کی جگہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ پاک تمہارے مال کو، ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو دل دیکھتا ہے۔ رمضان جو ہمیں وہ پاکیزگی دے کے گیا ہے کہ جس سے ہمارا جو ہے وہ وجود اندر سے پاک ہوا ہے، کیونکہ جب ہم نے روزے رکھے تو ہمیں تقویٰ حاصل ہوا، عبادت کی لذت میسر آئی۔ اس پاکیزگی کو، اس صاف ستھرے کو ہم باقی رکھیں۔ جیسے ہم گھر جب صاف کرتے ہیں نا، تو اس کی صفائی ستھری کا، ستھرائی کا اہتمام بھی رکھتے ہیں، اس کی مینٹیننس بھی رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو وجود ہے، یہ وجود میں جو ایک قلب کی کیفیت ہے جسے دل کہا جاتا ہے، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ بچپن والا وہ قول یاد آ رہا ہے جو آپ نے بڑی چھوٹی عمر میں فرمایا تھا کہ پہلے نگاہ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر باقی اعضا بہکتے ہیں۔ تو نگاہ کو بھی بہکنے سے بچائیں تاکہ دل بھی بچا رہے، اور اس کی برکت سے پورا وجود آپ کا گناہوں کی آلودگی سے پاک رہے۔
کیا بات، کیا بات ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ پروگرام گھر اور معاشرہ، آج کا ہمارا جو پروگرام کا وقت یہ اینڈ ہوا چاہتا ہے، اس پر بس یہی عرض کریں گے کہ رمضان آیا، جانے پر ہے، نہ جانے آئندہ سال، آئندہ سال تو دور کی باتیں، بھی چند دن باقی ہیں، کیا پتہ عید کا چاند دیکھنا بھی نصیب میں ہے، ہو کہ نہ ہو۔ हमें अपनी मौत को याद करना चाहिए, न जाने कब तख्ता गुसल पर लेट जाए, कब कफन पहनना हमारे मुकद्दर में लिखा, अल्लाह ये जानता है। तो अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी है, इसको नेकियों में गुजारें, अल्लाह की रज़ा वाले कामों में गुजारें। और माशाल्लाह दावत इस्लामी का कितना प्यारा माहौल है, कितना प्यारा माहौल है। मैं इस्लामी भाइयों से अर्ज़ करूँगा, चांद रात को मदनी काफ़िले सफ़र करते हैं तो राह खुदा के मुसाफिर बन जाएँ। ईद आती है, कितनी ईद आई और चली गई, तो ये भी एक ईद होगी जो राह खुदा का मुसाफिर बन जाए बंदा। ईद पर कैसे जाएंगे, जाने वाले जाते हैं एहतिकाफ़ से निकल कर चले जाते हैं, कोर्स कर लेते हैं और जामियतुल मदीना में दाखला ले लें अगर आपकी ऐसी उम्र है, या कर सकते हो दरस निज़ामी कीजिए, आलिम कोर्स कीजिए। तो यूँ नेक माहौल से अटैचमेंट रहेगी तो इंशाअल्लाह नेकियां करना आसान होगा।
अच्छा,
इस्लामी बहनों से अर्ज़ है कि आपके इलाकों में जो दावत इस्लामी के इस्लामी बहनों के इजतिमात होते हैं और दिगर जो सीखने सिखाने का सिलसिला होता है उसमें आप दाखिला लीजिए, उसमें जाइए, इस्लामी बहनों से कनेक्ट हो जाएँ और मदनी चैनल भी देखते रहें। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त एंड हुआ चाहता है और ये रमज़ान का हमारा इस प्रोग्राम का आखिरी ईपी है, आखिरी एपिसोड है, आखिरी प्रोग्राम है घर और मुआशरे का। फिर ईद के बाद अल्लाह ने चाहा मौका मिला तो हाज़िरी देंगे। तो वो अमीर अहले सुन्नत का वो रिक्कत वाला कलाम जो आपने रमज़ान की जुदाई पर, रमज़ान के विदा होने पर लिखा है, आइए रिक्कत और सोच के साथ ये अमीर अहले सुन्नत का कलाम सुनते हैं।
अलविदा आया हिलाले मां رسول اللہ شہاب غم کے مارے خون کے آنسو بہاتے ہیں شہاب غم چلا تڑ پا کے ہائے ماہ رمضان یا رسول اللہ چلا تڑ پا کے ہائے ماہ رمضان ریاضت کچھ نہ کی ہم نے عبادت کچھ نہ کی ہم نے ریاضت کچھ نہ کی ہم نے عبادت کچھ نہ کی ہم نے رہے بس ہر گھڑی مشغول اسیاں یا رسول اللہ رہے بس بولے اسیاں یا رسول اللہ میں ہائے جی چراتا کی رہا رب عبادت سے میں ہائے جی چراتا ہی رہا رب کی عبادت سے گزارا غفلتوں میں سارا رمضان یا رسول اللہ گزارا غفلتوں میں سارا رمضان یا رسول اللہ میں سوتا رہ گیا غفلت کی چادر تان کر افسوس میں سوتا رہ گیا افسوس خدا را میری بخشش کا وہ سامان یا رسول اللہ خدا را کوشش کا وہ سامان یا رسول اللہ خدا کے ہو گھر ہو میرا امن کا گہ